आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल। सशस्त्र बलों के सम्मान में प्रदेश के कई जनपदों में निकाली गई तिरंगा यात्राएं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में किया सेना के शौर्य को नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित, कहा प्रदेश के प्रत्येक मंडल में की जाए आयुष महाविद्यालय की स्थापना। और प्रदेश में अगले 7 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित जनपदों में राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेज रही है। ये प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
इस बहुदलीय शिष्टमंडल का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सहमति और आतंकवाद से लड़ने के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखना है। वे दुनिया को भारत का सख्त संदेश देंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति रखता है। इन 7 शिष्टमंडलों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, द्रविड़ मुनेत्र कजगम की कनिमोझी करुणानिधि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुदलीय शिष्टमंडल के बारे में कहा है कि ये भारत के साझा संदेश को लेकर चलेंगे, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति का संदेश होगा। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। श्री रिजिजू ने कहा कि ऐसे क्षणों में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि भारत एकजुट खड़ा होता है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 5 प्रमुख राजधानियों में बहुदलीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए केंद्र द्वारा आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित की बात होगी और उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी, वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इसी बीच मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत का सामूहिक संकल्प दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने के महत्व को रेखांकित करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर का आभार व्यक्त किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में महाराजगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है।
कारगिल के बाद जिस प्रकार से भारत के सेना ने पाकिस्तान में चुन चुन कर 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान से लड़ाई का नहीं है, हमारा लक्ष्य आतंकवाद से लड़ाई का है। और आतंकवाद जहां तक घुसे रहेंगे, और अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, अभी डीजीएमओ का 18 तारीख को पुनः वार्ता होनी। इस केस के सभी प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि अब पाकिस्तान से अगर वार्ता होगी तो केवल आतंकवाद पे और गुलाम कश्मीर पे ही वार्ता होगी, दूसरे किसी चीज पे वार्ता नहीं होगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान की अगुवाई में गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर, फिरोजाबाद में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। बागपत की तिरंगा यात्रा में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री केपी मलिक शामिल हुए।
जो आज का उत्साह इस बात का सबूत है कि जो हमारे जवानों ने किया, जो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक ने अपने सहयोग देने का काम किया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेने का काम किया, उसी की हौसला अफजाई के लिए सब मिलकर इस बात का सबूत है कि हर हमारा जवान आगे बढ़ता रहे, देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे और हम उन्हें वो ताकत देंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया था। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के निवासी राइफलमैन संजय कुमार 1996 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में शामिल हुए। 4 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान राइफलमैन संजय कुमार मुश्को घाटी में .4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने वाली टीम के प्रमुख स्काउट थे। जब हमले के लिए टीम आगे बढ़ रही थी तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़ी का आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमला किया जाए। उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया और दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। अचानक हुए हमले से दुश्मन बौखला कर भाग खड़ा हुआ और इसी भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार उसी यूनिवर्सल मशीन गन से दुश्मन का ही सफाया शुरू कर दिया और फ्लैट टॉप क्षेत्र को दुश्मन के हाथों से छीन लिया। जख्मी होने के बावजूद राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन से जूझते रहे और वीरता, साहस और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयुष विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत आयुष की सभी पद्धतियों को एक ही परिसर में उपलब्ध कराया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आयुष संस्थानों में नेचुरोपैथी और योग सेंटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए और सभी स्वीकृत शैक्षणिक व चिकित्सकीय पदों को 100% भरने की कार्यवाही समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जनपद में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ किए जाएं जो सरकारी या पीपीपी मोड में संचालित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंडलों, जनपदों, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों और सरकारी विभागों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
लखनऊ में चलती बस में आग लगने की दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। परिवहन विभाग की ओर से एनीवेयर फिटनेस प्रणाली के तहत पिछले एक वर्ष में जारी सभी फिटनेस प्रमाण पत्रों की जांच के लिए ये 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन संजय सिंह कर रहे हैं। समिति 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उधर इस मामले में गोरखपुर के तत्कालीन संभागीय निरीक्षक RI राघव कुमार कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पर्यटक ट्रेन में विस्टाडोम कोच का संचालन शुरू कर दिया गया है। आज से दोबारा IPL की शुरुआत हो गई है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच होने वाला है। 9 मई को भारत पाक तनाव को देखते हुए लीग मैचों को स्थगित कर दिया गया था। प्रदेश के कई जनपदों में आज तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में भीषण गर्मी का भी प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है, जबकि दक्षिणी इलाकों में लू चलने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत प्रभावित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करने के निर्देश दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता को तेज गर्मी और लू से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। इटावा और वाराणसी में इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल। सशस्त्र बलों के सम्मान में प्रदेश के कई जनपदों में निकाली गई तिरंगा यात्राएं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में किया सेना के शौर्य को नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा प्रदेश के प्रत्येक मंडल में की जाए आयुष महाविद्यालय की स्थापना। और प्रदेश में अगले 7 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित जनपदों में राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।